नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। भारत ने कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान के नारों का कड़ा विरोध किया। दिल्ली में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया। मौसम विभाग का अगले 4 दिन तक देश के दक्षिण हिस्सों में लू की स्थिति जारी रहने का अनुमान। माले में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों डबल्स खिताब जीते। और चीन में थॉमस कप बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के माढ़ा, उस्मानाबाद और लातूर में महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल सोलापुर, सतारा और पुणे में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में जहीराबाद संसदीय क्षेत्र के अलादुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता अमित शाह कल हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल खम्मम और महबूबाबाद में चुनाव प्रचार किया और निजामपेट में एक रोड शो में भाग लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हताश होकर भाजपा और उसके वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में यादगिर जिले में चुनावी सभा में देश में बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित के बारे में सोचती है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार में और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल छत्तीसगढ़ में प्रचार किया। इनके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बदायूं में तथा अन्य दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में कल नाम वापस लेने के आखिरी दिन 16 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में नाम वापसी में सबसे चौंकाने वाला नाम इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम का रहा। उन्होंने न केवल नाम वापस लिया बल्कि कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता भी ले ली। 4थे चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 21 करोड़ रूपये की नकद राशि सहित करीब 258 करोड़ रूपये मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। इसमें 37 करोड़ रूपये से ज्यादा की शराब और 23 करोड़ रुपए के ड्रग्स शामिल हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खंडवा और बड़वानी में प्रचार करेंगे, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भिंड में पार्टी के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बदायूं की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। बदायूं क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी की गहरी पकड़ है। 2019 के चुनाव में 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। यहां इस बार भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव को INDIA गठबंधन से उम्मीदवार बनाया है। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खान को टिकट दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3 महिलाओं सहित 8 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।
बदायूं लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें गुन्नौर, बिसौली, सहसावान, बिलती और बदायूं शामिल हैं। यहां कुल 24,09,905 मतदाता 7 मई को 11 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इनमें 12,92,286 पुरुष मतदाता, 11,17,516 महिला मतदाता और 103 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट से पहले शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। खास बात यह है कि इस बार भाजपा और सपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सपा ने आदित्य यादव तो भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्या को टिकट दिया है। वहीं बसपा शेखपुर के पूर्व विधायक मुस्लिम खां को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस सीट पर जीत बरकरार रखने के लिए जमकर प्रचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह यहां जनसभाएं कर चुके हैं। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जनसभाएं आने वाले दिनों में यहां प्रस्तावित हैं। इनके अलावा अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
मणिपुर में बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर आज पुनः मतदान करवाया जा रहा है। उखरुल जिले में 5 मतदान केंद्रों और सेनापति में 1 केंद्र पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, ये शाम 4 बजे तक चलेगा। इन केंद्रों पर 26 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे निरस्त करते हुए फिर से मतदान के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति गरीबों को सशक्त बनाने की है। एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने 30 साल तक गठबंधन सरकारों के दौरान अस्थिरता देखी है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने एक स्थिर, मजबूत और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। भारत ने कनाडा में एक कार्यक्रम में खालिस्तान के नारों का कड़ा विरोध किया है। इस कार्यक्रम को कनाडा के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया। मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन में इस तरह की अलगाववादी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने पर भारत ने गहरी चिंता और कड़ा विरोध व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को बढ़ावा देना प्रदर्शित करता है। मंत्रालय ने कहा है कि नारों की निरंतर अभिव्यक्ति भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित करती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक।
मालदीव में कल छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला डबल्स का खिताब जीत लिया। पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के मोहम्मद गुफरान और के श्रीनिवास की जोड़ी ने मालदीव के इस्माइल आजमीन और हसन नाजिम की जोड़ी को 25-15 और 25-16 से हराया। महिला डबल्स में भारत की आकांक्षा कदम और साइनी सेबिस्टियन की जोड़ी ने फाइनल में भारत की ही रश्मि कुमारी और के नागरज्योति को 21-25, 25-17, 25-17 से हराया। वहीं चीन के चेंगदू में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत ने ग्रुप सी के मुकाबले में इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले मैच में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणोय ने हैरी हुआंग को हराकर भारत को बढ़त दिलाई। वहीं दूसरे मैच में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बेन लेन और सीन वेंडी को हराया। तीसरे मैच में किदांबी श्रीकांत ने नदीम दलवी को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में कल शाम कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने 154 रन के लक्ष्य को 16 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर हासिल किया। आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत आज सिलहट में 5 मैचों की 2020 सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा।
मौसम विभाग ने तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी सहित लगभग समूचे दक्षिण हिस्से में अगले चार दिन लू जैसी स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में अगले दो दिन अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री और मध्य भारत में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है।
पूर्व तटीय भारत का इलाका का बात करें तो जो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा ये सब जगह में हीट वेव जारी है। मेनली जो हमारा वेस्ट बंगाल एरिया है, चाहे स्वाभिमंडन वेस्ट बंगाल हो, गैंगटिक वेस्ट बंगाल हो, सारा क्षेत्र में जो अति उष्ण लहर प्रकोप जारी है। दक्षिण भारत का बात करें तो रायलसीमा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश में तापमान ज्यादा चल रहा है। और अगर पश्चिम भारत का बात करें तो जो गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहाँ भी हीट वेव चल रहा है, तो उसके लिए भी ऑरेंज कलर 2 दिन है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट अब इस वर्ष 18 जून को होगी। पहले ये 16 जून को आयोजित होने थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के बाद ये फैसला किया है। यूजीसी नेट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा होती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
धन्यवाद विमलेंदु। चुनावी सरगर्मियां अखबारों के मुखपृष्ठ पर छाई हुई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर जनसत्ता की सुर्खी है, पूछताछ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तलब। पुलिस ने चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश सहित विभिन्न धाराएं लगाई। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, सूरत के बाद अब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस लेकर भाजपा में। भाजपा ने बताया मोदी की गारंटी, कांग्रेस ने कहा दबाव की राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की स्थिति पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर नव भारत टाइम्स लिखता है, सीएम पद पर बैठे शख्स की गैर मौजूदगी ठीक नहीं। संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर अमर उजाला की सुर्खी है, चंद व्यक्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता क्यों। सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद तक स्थगित। दैनिक जागरण की खबर है, ब्याज वसूली के अनुचित तरीकों के प्रयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक चिंतित, केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं से प्रक्रिया में सुधार करने और वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया। हिन्दुस्तान तैयारी शीर्षक से लिखता है, एक पॉलिसी में कई तरह की बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा, गांव समेत देश की ज्यादा आबादी तक मुहैया कराना इस पॉलिसी का मकसद, 500 रूपये में स्वास्थ्य कवर और 100 रूपये के प्रीमियम में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर मिल सकता है। नव भारत टाइम्स का कहना है, एनपीएस ने कमाई में म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ा, एनपीएस इक्विटी फंड्स पिछले 10 साल में लार्ज कैप और म्यूचुअल फंड कैटेगरी को लगातार पीछे छोड़कर आगे, मैनेजमेंट फीस के जाल से बचाता है एनपीएस। मेडिकल पत्रिका लैंसेट के शोध के हवाले से राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से टाइप 2 मधुमेह का खतरा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। भारत ने कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान के नारों का कड़ा विरोध किया। दिल्ली में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया। और मौसम विभाग का अगले 4 दिन तक देश के दक्षिण हिस्सों में लू की स्थिति जारी रहने का अनुमान। माले में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों डबल्स खिताब जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।